نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت کا بہترین استعمال کروائے، اور آج ہم یہاں جو بات سن کے جائیں وہ حقیقت میں ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. انشاء اللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں کس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ وہم فی غفلت موریدون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے. الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اس کو کھیلتے کودتے ہی سنتے ہیں، یعنی اہمیت نہیں دیتے، سیریس نہیں لیتے، کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل تو لغو میں مشغول ہیں، بیکار قسم کے مشغلوں میں ان کے دل مشغول ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہیں جیسا. یعنی کوئی نئی بات تھوڑی ہے اس کی، سب کو پتہ ہے یہ باتیں 20 بار سنی ہوئی ہیں، یہ نبی کوئی خاص بات تو کرتا نہیں. اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو میں آ جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، خامخواہ اس باتوں کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہو. یہ ہیں وہ چند آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور نقشہ کشی تو اس وقت کے لوگوں کی تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بات آج کے لوگوں کی ہے. اور دیکھا جائے تو لوگوں میں سے اکثریت کا معاملہ ہر دور میں ایک ہی جیسا رہا. کیا؟ پہلی بات انہی آیات کی میں کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. یہ کون سا حساب ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے اس میں، اور وہ حصہ جو اب آنے والا ہے، یہ نسبت ہے کہ جیسے کپڑا بیچنے والا کپڑا پھاڑے، سارا کپڑا پھٹ چکا ہے لیکن کنی کا تار بچا ہوا ہے. جو کپڑا کاٹتے سیتے پھاڑتے ان کو اندازہ ہے کہ پورا کپڑا ایسے ہی کٹ جاتا ہے، لیکن جب کنی آتی ہے تو اس کو ذرا سے جھٹکے سے پھاڑنا پڑتا ہے. مراد کیا ہے کہ دنیا کا بیشتر وقت گزر چکا ہے، और थोड़ा सा वक्त बाकी है। इसी बात को एक और हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लम ने वाज़े किया, आपने फरमाया कि दुनिया का वो हिस्सा जो गुजर चुका है वो ऐसे है जैसे सुबह की यानी फजर से लेके असर की नमाज तक का वक्त, और जो वक्त बाकी रह गया है वो ऐसे है जैसे असर की नमाज से लेकर मगरिब तक का वक्त। कितना थोड़ा होता है, आप में से सभी को अंदाज़ा होगा इस बात का कि जब सारा दिन गुजर जाता है और शाम से पहले जो असर आती है तो बस वो वक्त तो ऐसे लगता है कि अब दिन भाग जाएगा, असर के बाद तो दिन हाथ ही नहीं आता, कि सारा वक्त गुजर चुका है दुनिया का और बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। अगर देखा जाए तो हम सब इस वक्त दुनिया में जिस दौर में दाखिल हुए हैं ये करीब है क़यामत का। नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरा आना क़यामत की कुर्बत की अलामत है, क्योंकि जितने नबी आने थे ना, मारूफ है कि 1,24,000 पैगंबर वो आ चुके चले गए, अब इसके बाद कितने रह गए हैं कोई भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब वो नबी जो सब चले गए आदम से लेके नबी सल्लम तक, वो कितना लंबा अरसा गुजरा होगा, जरा बैठ के सोचिए। आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हुए कितना वक्त हो गया, अभी तक क़यामत नहीं आई। इसी तरह अब हम मरेंगे ना तो हमारा कब्रों का वक्त हमारे उस उम्र के हिस्से से जो हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं ना कई गुना ज़्यादा होगा। जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए ना कि मैंने कब्र में इस ज़िंदगी से ज़्यादा वक्त गुजारना है और कब्र के बाद हशर के बाद जन्नत या जहन्नम का वक्त इन सब से ज़्यादा है और उसकी तो कोई इंतहा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि उसको ये दुनिया कैसी लगेगी, बहुत बेमानी। ऐसे ही है ना, आप किसी जगह जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, आपको लगता है कि बस यहाँ 3 घंटे का फन है, फ्लायर ग्लैमर सब कुछ, और उसके बाद वापस आपको अपनी रूटीन में आ जाना है जहाँ बहुत सारे गम परेशानियाँ मसाइल है, तो आपको वो 3 घंटे भी बहुत थोड़े लगते हैं। आप कहते हैं हाय फिर वही मुसीबत है, हाय वहीं जाना है, फिर पिकनिक के लिए चले जाएं, सैर के लिए चले जाएं, किसी शादी मंगनी में चले जाएं, आपको एहसास होता है कि अच्छा इसके बाद फिर कुछ नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी का है। अल्लाह ताला कहते हैं तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, और अभी तो हमने बात की ना क़यामत के आने की, लेकिन हम में से हर एक की अपनी क़यामत कब आती है, जब हमारी मौत आती है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि मम माता फ़कत क़ामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, क्योंकि मौत के साथ ही हमारे वो सारे असरात शुरू हो जाते हैं जो हमें मरने के बाद पेश आने वाले हैं। मौत का वक्त जब होता है तो उस वक्त फरिश्ते जो आते हैं उनका आना ही पता चल जाता है कि अब हम जन्नत के राही हैं कि जहन्नुम के हैं। ये एक और मौके पे हम इस पे डिटेल से बात कर चुके हैं सूरत अल आराफ की आयतों में, कि मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है, जर्नी ऑफ द सोल, कि हमारी रूह के साथ क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। इसको एक बात में आप सुनना चाहें तो शायद वेब पे लेक्चर होगा, आप सुन सकते हैं कि मरते ही नेक के साथ क्या होता है और बद के साथ क्या होता है, क्योंकि ये वो मौजू है कि जिस पे अमूमन लोगों ने बहुत ज़ईफ़ रिवायतें भी जमा की हुई हैं, और एक बड़ी मारूफ किताब है मरने के बाद क्या होगा, उसको बहुत शौक से लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं। तो सही अहदीस की रोशनी में उसमें देखा हुआ हमने, यहाँ तो बात हम करेंगे हिसाब की कि आज मरे कल दूसरा दिन। आज इस दुनिया में हम जो आए हैं ऐसे लगता है कि कभी यहाँ से जाना ही नहीं, मुझे तो यही लगता है, ऐसे लगता है कि बस अल्लाह ने हमेशा हमें ऐसे रखना है। और कितनों को मरता देख ले अपनी मौत का यकीन नहीं आता। सबसे मुश्किल चीज़ यह है कि इंसान को अपनी मौत का यकीन आ जाए। इसी तरह घंटी बजेगी, इसी तरह लोग कहेंगे आज फलां का इंतकाल हो गया, अपने नाम के साथ ये जुमला बोल के देखें कि ये खबर आती है कि मैं मर गई, तो क्या हाल होगा। दुनिया वाले तो ये सोच रहे होते हैं ना, ये चला गया, और उस इंसान के साथ क्या है उसका हिसाब, उससे मुलाकात करने को तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजूल कदम अन इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन्हु खमसा। आदम का बेटा क्यामत के दिन मैदाने महशर से कदम भी नहीं हटा सकेगा जब तक के पांच सवालों के जवाब ना दे दे। पांच सवाल मस्ट, कंपल्सरी। आपने दुनिया में कई इम्तिहान दिए होंगे, आप उन इम्तिहानों में देखते हैं कि पांच सब्जेक्ट हैं, उन पांचों को करना पड़ता है। आप सुनना चाहेंगे कि क्यामत के दिन के पांच सवाल कौन से हैं? और ये अल्लाह ताला की खास रहमत है कि उसने हमें पहले से बता दिया। दुनिया में किसी पर्चे का पहले से आउट होना उस पर्चे को कैंसिल करा देता है कि जी वक्त से पहले पेपर रिलीज हो गया, गलती से हो जाए, किसी की लापरवाही से हो जाए या किसी वजह से हो जाए, वो पेपर नहीं होता। क्योंकि सवाल तो सारे पहले ही पता चल गए, अब तो लोग सारे तैयार करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए इंसानों की गफलत, पर्चा रिलीज्ड है, सब कुछ पता है, तैयारी फिर भी नहीं करते। वो कौन से सवाल है? इस हदीस को पूरा करके फिर अगर आप इंशाल्लाह मौका हुआ तो आपको, बल्कि इससे पहले मैं आपको कब्र के तीन सवाल बता देती हूँ ताकि तरतीब बाकी रहे। इस हदीस को थोड़ा सा पेंडिंग में रख लेते हैं। मरने से लेके एक इंसान के साथ हिसाब किताब के नाम से क्या मामला पेश आता है? अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात का ये खुलासा है कि जब एक शख्स मरता है और उसके रिश्तेदार अभी उसको कब्र में दफन करके वहां से हटते भी नहीं है कि उस मुर्दे को कब्र में जिंदा कर दिया जाता है। अब वो जिंदगी किस तरह की है, वल्लाहु आलम। हमारा ईमान है कि मुर्दा जिंदा होता है। फयातियानी मलकानी फयुजलिसानी, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे हिसाब लिया जाता है। तीन सवाल हैं जो कब्र में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला सवाल क्या है? मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन था बताओ, किसको रब कहते थे? आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, किसको नहीं आता अल्लाह का नाम, अल्लाह, रब, गॉड। लेकिन जिसने जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को अहमियत ना दी होगी, उसकी जुबान पे लफ्ज अल्लाह नहीं आएगा। जिसने शिर्क किया, जिसने गैरों को पुकारा, बुजुर्गों को पुकारा, उसकी मदद, उसकी मदद, वो लफ्ज अल्लाह नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा लादरी, लादरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि वो कहेगा काश मैं कुछ लिखता पढ़ता और आज इस सवाल का जवाब देता। इससे पता चलता है कि कब्र के इन सवालों के लिए भी इंसान को इस जिंदगी में अल्लाह के दीन को सीखना पड़ता है। आज तो हर एक बोलता है ना, अपनी जुबान से बोलता है, समझता है, पढ़ता है, लेकिन कब्र से लेके हशर के मामलात में हर बंदा अपने आमाल की निस्बत से बोलेगा। लिहाजा जिसने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना होगा वो लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं बोल सकेगा। लेकिन एक ईमान वाला जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बतों में गुजरी, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगा, जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहता था कि या कना अबुदू व या कनस्तईन, बल्कि जो हकीकत में अल्लाह का बंदा था, वो फौरन कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। पास हो गया और दूसरा फेल हो गया। फिर अगला सवाल होगा मर रसूलू का, तेरे रसूल कौन थे? देखिए कब्र का सवाल क्या है कि रसूल कौन थे, और इसका जवाब भी वही दे सकेगा जिसने जिंदगी में रसूल से मोहब्बत की होगी, उनके तरीकों से मोहब्बत की होगी, उनके हुक्मों पे चला होगा, उनकी सुन्नतें उसको बड़ी प्यारी होंगी, जो हर उस चीज़ से बचेगा जिससे रसूल बचे, हर वो काम करना चाहेगा जो रसूल ने किया, वो तो फौरन कह देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसके बरक्स कोई दूसरा चाहे कितनी मोहब्बत करे रसूल से, उनका नाम लेके अंगूठे चूमे, उनका नाम लेके दरूद पढ़े, उनके नाम पे नाते पढ़े मोहब्बत के साथ, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में रसूल की तालीमात का अक्स नहीं होगा तो लफ्ज़ मोहम्मद उसकी ज़ुबान पे नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी यही कहेगा, लादरी लादरी, काश पढ़ता लिखता और आज इस सवाल का जवाब देता। अनपढ़ ही रहा, दुनिया का तो सब कुछ ही पढ़ता रहा। जिसकी जरूरत सिर्फ चंद साल थी, उसको पढ़ने के लिए कितना वक्त लगा। और जिस सवाल का जवाब हर एक को देना है, उसकी तैयारी मैंने नहीं की।